आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हिमांशी भरद्वाज और मैं आपके साथ आपकी 9th क्लास की साइंस बुक को डिस्कस करती हूँ। आज हम आपके साथ चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का 4th पार्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे और इसमें हम आपके साथ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पार्ट को करेंगे। इंडेक्स क्वेश्चंस और समरी को हम पिछले ऑडियोज में डिस्कस कर चुके हैं, सो आज हम करेंगे एक्सरसाइजेस। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। अ 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरॉन वॉज फाउंड बाय एनालिसिस टू कंटेन 0.96 ग्राम ऑफ बोरॉन एंड 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कैलकुलेट the percentage composition of the compound by weight. So, इस question में आपको एक sample दिया है जिस जो compound है oxygen और boron का, और उस sample का weight आपको given है कि वो 0.24 gram का है। अब जब उसका analysis किया गया तो पता चला उस compound के अंदर 0.096 ग्राम तो बोरोन है और 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। अब आपको उनका परसेंटेज कंपोजिशन, जो कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन है बाय वेट, वो कैलकुलेट करना है। सो अब जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो आप सॉल्यूशन में जो भी मासेस आपको गिवन है वो सबसे पहले आप इंडिकेट करेंगे। आपको ये हमेशा याद रखना है कि जब भी आप सॉल्व करना स्टार्ट करें तो क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है आपको उसको नोट करें। उससे एक तो एग्जामिनर पर आपका जो इम्प्रेशन है वो अच्छा होता है, दूसरा आपको भी याद रहता है कि आंसर लाने के लिए हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। सो अब आप स्टार्ट करेंगे नोट डाउन करना। तो आपको देखिए यहाँ पे मास ऑफ बोरोन दिया है, तो सबसे पहले आप मास ऑफ बोरोन इक्वल्स टू 0.096 ग्राम लिखेंगे और ब्रैकेट में गिवन लिखेंगे। देन ऐसे ही आपको ऑक्सीजन का मास दिया है तो आप लिखेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स 0.144 ग्राम और ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन। गिवन लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको इंडिकेट करना है कि यह आपने खुद से नहीं लिखा, यह आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। देन आपको मास ऑफ सैंपल गिवन है तो आप मास ऑफ सैंपल लिखेंगे इक्वल्स टू 0.24 ग्राम गिवन। नाउ आपको कंपाउंड के अंदर बोरॉन और ऑक्सीजन दोनों का परसेंटेज बाय वेट कितना है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि गिवन मास ऑफ द जो भी आपका यहाँ पर एलिमेंट है उसका गिवन मास अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन या सैंपल इनटू 100। सो आपको अभी करना है पहले बोरॉन का, तो आप लिखेंगे द परसेंटेज ऑफ बोरॉन बाय वेट इन द कंपाउंड इक्वल्स टू 0.096 अपॉन 0.24 इनटू 100, क्योंकि आपको बोरॉन का मास जितना दिया है उतना लिखेंगे, टोटल आपको मास जो दिया है आप वो लिखेंगे। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, पूरा इसको कैलकुलेट करेंगे, then you will get 40%, okay? इसी तरीके से आपको परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट इन द कंपाउंड निकालना है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आप गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल मास ऑफ सैंपल इनटू 100 करेंगे। तो यहाँ पे आपको गिवन मास जो है ऑक्सीजन का वो है 0.144 अपॉन 0.24 या 0.24 इनटू 100, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे सो आपका आंसर आना चाहिए 60%। दैट मींस जो कंपाउंड है उसके अंदर 60% ऑक्सीजन है बाय मास और 40% बोरॉन है बाय मास या बाय वेट, यही आपको कैलकुलेट करना था। सो ये क्वेश्चन हो गया, बोरॉन आएगा आपका 40% और ऑक्सीजन आएगा 60%। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। When 3 gram of carbon is burnt in 8 gram of oxygen, 11 gram of carbon dioxide is produced. What mass of carbon dioxide will be formed
when 3 grams of carbon is burnt in 50 grams of oxygen? Which law of chemical combinations will govern your answer? So, question number 2 में आपको बताया गया है कि जब 3 ग्राम कार्बन को बर्न किया जाता है या जब उसे जलाया जाता है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलती है और 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट मिलता है। यानी जब कंबस्टन किया जाता है, इस प्रोसेस को कंबस्टन कहते हैं, और कंबस्टन के दौरान जब कार्बन को बर्न किया जा रहा है, उसे जलाया जा रहा है, तो उसके प्रोडक्ट में 8 ग्राम ऑक्सीजन, सॉरी, उसको जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जा रहा है तो हमें एज अ प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। मींस रिएक्टेंट साइड पे आपका कार्बन प्लस ऑक्सीजन है और आपके प्रोडक्ट साइड पे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। सो जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो अपने सॉल्यूशन के अंदर आपको स्टार्टिंग में देना चाहिए केमिकल रिएक्शन। आप ऑलवेज प्रोवाइड करेंगे कि आपको क्वेश्चन में केमिकल रिएक्शन क्या दी हुई है। केमिकल रिएक्शन लिखने के बाद आप उसके नीचे जितने भी कंपाउंड्स हैं या एलिमेंट्स हैं उनके जो गिवन मासेस हैं वो आप उसके नीचे इंडिकेट करेंगे। सो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में, व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड। सो यहाँ पे पूछा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास प्रोड्यूस होगा जब 3 ग्राम ऑफ कार्बन को जलाया जाएगा 50 ग्राम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। यानी जब आपको पहले वाले कंडीशन बोला गया तो उसमें कार्बन तो 3 ग्राम था बट ऑक्सीजन केवल 8 ग्राम था। बट अभी आपसे पूछा गया है कि तब क्या होगा जब हम कार्बन कंटेंट तो 3 ग्राम ही रखेंगे लेकिन हम ऑक्सीजन को कितना कर देंगे, 50 ग्राम कर देंगे। और फिर एक और क्वेश्चन आपसे पुट अप किया गया है कि ये जो अभी आपको रिएक्शन में पूछा गया वो किस लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन को, कॉम्बिनेशन को फॉलो करता है। सो आप उसके लिए पूरा रीजन या एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कीजिए। सो ये था आपका क्वेश्चन। अब हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। सो पहले आप लिखेंगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नाउ 3 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी 3 ग्राम कार्बन जब रिएक्ट करता है 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ तो वो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ये गिवन है स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन के अंदर। इफ 3 ग्राम ऑफ कार्बन is burnt in 50 gram of oxygen, then 3 gram of carbon will react with 8 gram of oxygen to form 11 gram of carbon dioxide. यानी कि जब भी हम combustion करेंगे तो 3 gram carbon जो है वो again 8 gram of oxygen के साथ combustion करा के क्या करेगा, 11 gram carbon dioxide को क्या करेगा, produce करेगा। बाकी जो रिमेनिंग रह जाएगी 42 ग्राम ऑक्सीजन वो अनरिएक्टेड रह जाएगी। और ये जो हमारा पूरा केमिकल रिएक्शन था ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। अगर हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को रिवाइज करें तो आपको याद होगा कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या स्टेटमेंट देता है, इसको प्राउस्ट लॉ भी कहा जाता है। क्योंकि इसमें बोला गया है कि जो कॉम्पोजिशन स्टेट में हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में रहते हैं और ये डिपेंड नहीं करता किसी भी सोर्स या मेथड ऑफ प्रिपरेशन को। एक बार अगर याद दिलाऊं मैं आपको तो इट स्टेट्स दैट अ गिवन केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स इट्स कॉम्पोनेंट एलिमेंट्स in fixed ratio and does not depend on its source and method of preparation. So, यहाँ पर जो हमारा method of preparation था उसमें हमने oxygen extra दी थी लेकिन उसके बाद भी 3 gram carbon ने react किया 8 gram oxygen के साथ और उसने 11 gram carbon dioxide को produce किया। बाकी की जो oxygen रह गई थी वो unreacted रह गई। So, कभी भी जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन करेंगे तो एलिमेंट्स का या कंपाउंड्स का रेशियो कभी चेंज नहीं होगा। ये इसीलिए फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या प्राउस्ट लॉ को। सो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर टू। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस, गिव एग्जांपल्स। आपको पॉलीएटॉमिक आयंस के बारे में बताना है और उसके लिए एग्जांपल्स देने हैं। सो अ पॉलीएटॉमिक आयन इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। सो पॉली मीन्स होता है मोर देन या फिर मैनी, और इसके लिए एक वर्ड आता है ग्रुप। सो पॉली मीन्स मैनी एंड ये क्या है पॉलीएटॉमिक, ये ऐसे आयन्स होते हैं जिनके ऊपर चार्ज या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, और ये ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम आयन, अमोनियम आयन इसका एक एग्जाम्पल है NH4 और ऊपर है इसके ऊपर प्लस NH4 और चार्ज है प्लस। ऐसे ही है हाइड्रोक्साइड आयन OH-, कार्बोनेट आयन CO3- एंड सल्फेट आयन, और जो भी एग्जाम्पल्स आपको अपनी बुक में मिल जाए आप उसको लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, राइट द केमिकल फॉर्मूले ऑफ द फॉलोइंग। आपको केमिकल फॉर्मूले देने हैं जो कंपाउंड्स आपको लिखे हुए हैं। पहला है मैग्नीशियम क्लोराइड। सो फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट मैग्नीशियम एंड क्लोराइड। मैग्नीशियम का और क्लोराइड का आपको वैलेंसी लिखना है। सो मैग्नीशियम का जो वैलेंसी होता है वो होता है 2 और क्लोराइड का वैलेंसी होता है 1। सो जब आप उसको क्रॉसओवर करेंगे तो आपका फॉर्मूला आएगा MgCl2। नाउ कैल्शियम ऑक्साइड, फॉर कैल्शियम ऑक्साइड यू हैव टू राइट कैल्शियम। पहले आप सिंबल्स लिखेंगे, जैसे मैग्नीशियम का सिंबल था Mg, क्लोराइड का सिंबल था Cl, उसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम का सिंबल लिखेंगे और ऑक्सीजन का सिंबल लिखेंगे। कैल्शियम के लिए Ca और ऑक्साइड के लिए O, देन आप दोनों की वैलेंसी लिखेंगे जो कि होती है 1-1, तो आपको मिलेगा CaO। नाउ कॉपर नाइट्रेट के लिए Cu और नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3। Cu के ऊपर जो चार्ज है और जो वैलेंसी है वो होती है 2। सो यहाँ पे जो आपका क्रॉसओवर के बाद फॉर्मूला आना चाहिए वो होगा CuNO3 ब्रैकेट में देन होल ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट। नाउ एल्यूमिनियम क्लोराइड, फॉर एल्यूमिनियम क्लोराइड राइट Al एंड Cl, देन राइट द वैलेंसी। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होता है 3, क्लोरीन की वैलेंसी होता है 1। आप क्रॉसओवर करेंगे, you will get the formula AlCl3, aluminium chloride. Now, calcium carbonate. Calcium carbonate, carbonate होता है CO3. Calcium carbonate, formula बनेगा CaCO3. Now, question number 5. Give the names of the elements present in the following compounds. So, आपको कुछ कंपाउंड्स दिए हैं जिनके यहाँ पर कॉमन नेम्स दिए गए हैं। आपको उन कंपाउंड्स के अंदर फाइंड आउट करना है कि एलिमेंट्स कौन से हैं। सो फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उस कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला क्या है। अगर आपको उसका केमिकल फॉर्मूला पता होगा तभी आप उसके अंदर के एलिमेंट्स को बता पाएंगे। सो फर्स्ट कंपाउंड है क्विक लाइन इज कैल्शियम ऑक्साइड और CaO. सो द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन क्विक लाइन आर कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। ओके, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। नाउ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, सो द केमिकल फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज HBr. Then the elements will be hydrogen and bromine. Hydrogen and bromine. Now baking powder. So the formula, the chemical formula for baking powder is NaHCO3, NaHCO3, which is also called as sodium bicarbonate, और इसको baking soda भी बोलते हैं. इसको generally use किया जाता है cooking में, baking में, like cakes या pastries को हम bake करते हैं, उसमें इसको use किया जाता है. So इसका chemical formula है NaHCO3 sodium bicarbonate, और इसके अंदर जो elements हैं वो 4 elements हैं, namely sodium, hydrogen, carbon and oxygen. Sodium Na, hydrogen H, C carbon O oxygen. Okay, now potassium sulfate. So the formula for potassium sulfate is K2SO4, and the elements are K stands for, K is the symbol for potassium, S is the symbol for sulfur, and O is oxygen. So potassium, sulfur and oxygen. Now question number 6, calculate the molar mass of the following substances. Aapko kuch substances given hai, aapko unka molar mass calculate karna hai, aur molar mass calculate karne ke liye aapko yaad hona chahiye sabhi ka atomic mass jo ki aapki book mein tables mein given hai. आपको उसको डेली 2-2, 3-3 एलिमेंट्स करके लर्न करना है. नाउ फर्स्ट सब्सटेंस इज इथाइन. इथाइन एंड द फॉर्मूला फॉर इथाइन इज C2H2. सो नाउ C2H2, C स्टैंड्स फॉर कार्बन एंड H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन. एज वी नो 12 इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन and 1 is the atomic mass of hydrogen. So C2 means 2 into 12 plus hydrogen 2 means 2 into 1. We will get 24 plus 4 equals to 28 gram per mole. आपको molar mass calculate करना है ethyne का. Ethyne का formula होता है C2H2. कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो है 12, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो है 1. सो अब आप देखेंगे कि एटॉमिसिटी कितनी है. एटॉमिसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक 12 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, यू विल गेट 28 ग्राम पर मोल. तो ये हुआ मोलर मास इथाइन का. नेक्स्ट बी, मोलर मास ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल. सो सल्फर मॉलिक्यूल S8. As we know, the atomic mass of sulfur is 32. Then you have to multiply 32 by 8. Then 256 gram per mole will be the molar mass of S8 molecule. Kitna aayega? 8 into 32, 256 gram per mole. Now C, phosphorus molecule P4. Atomic mass given hai aapko 31. Now P4 means 4 into 31. Aapka answer aana chahiye 124 gram per mole. Now D, molar mass of hydrochloric acid HCl means hydrogen has 1 atomic mass, 1 as atomic mass plus Cl 35.5. So molar mass हुआ HCl का 36.5 gram per mole. Unit लिखना बहुत जरूरी है. अगर unit नहीं लिखेंगे तो आपका half mark deduct हो जाएगा. Now D, nitric acid. Nitric acid का formula होता है HNO3. So 1 प्लस नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14 प्लस 3 इंटू 16, 16 मोलर एटॉमिक मास होता है ऑक्सीजन का. देन आपका मोलर मास आएगा नाइट्रिक एसिड का 63 ग्राम पर मोल. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स. 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का मास कितना होगा. ये आपको कैलकुलेट करना है. सो वन मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का मास होगा 14 ग्राम उसकी एटॉमिक मास के इक्वल. कितना होगा? 14 ग्राम. मोल क्या होता है? मोल के बारे में हमने पढ़ा था. वन मोल क्या होता है? अगर हम उसे एक बार रिवाइज करें, सो वन मोल क्या है? सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मोल है SI यूनिट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ स्पेसिफिक सब्सटेंस. क्या है? द मोल इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है उसके अंदर किसी सब्सटेंस का अमाउंट मेजर करने का ये सबसे छोटा यूनिट है मोल. ठीक है. अ मोल ऑफ अ सब्सटेंस और अ मोल ऑफ पार्टिकल्स इज डिफाइंड एज एग्जैक्टली 6.022 × 10³ पार्टिकल्स विच मे बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन्स और इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. इन शॉर्ट कह सकते हैं कि वन मोल इक्वल होता है अवोगेड्रो नंबर के या अवोगेड्रो कांस्टेंट के. उसकी वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है 6.022 × 10³. 10 की पावर 23 ये होता है वन मोल. सो नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन पार्ट बी. 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स. आपको मास बताना है 4 मोल्स एल्यूमिनियम एटम का. सो एटॉमिक मास गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर 27. आप उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? सो 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम इज इक्वल्स टू 4 × 27 ग्राम इक्वल्स 108 ग्राम. इसमें बस आपको इतना करना है, जैसे आपको 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम का मास निकालना होगा तो वो होगा 27 ग्राम के इक्वल, यानी उसका जितना एटॉमिक मास होगा. इसी तरीके से जब आप 4 मोल्स का निकालना चाहेंगे, 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम का आपको मास कैलकुलेट करना है, देन आप उसे 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4, तो आपको मिल जाएगा 4 मोल्स का मास. तो यहां आपका आंसर आना चाहिए 108 ग्राम. नाउ मास है इसलिए ग्राम लिखना बहुत जरूरी है. नाउ सी पार्ट. द मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड. सोडियम सल्फाइड के 10 मोल्स का मास निकालना है. सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला है Na2SO3. तो सबसे पहले आप इसका क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे. मॉलिक्यूलर मास आपका आएगा 126. कैलकुलेट करेंगे इसको 2 × 23. सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, देन प्लस करेंगे आप सल्फर का एटॉमिक मास 32, देन प्लस करेंगे 3 × 16 तो आपका आएगा कितना 126 ग्राम. ये हुआ आपका मॉलिक्यूलर मास. किसका? सोडियम सल्फाइड का. देन इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10 मोल्स का आ जाएगा. आपका आंसर आना चाहिए 1260 ग्राम. ये आपका आंसर आएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. कन्वर्ट इनटू मोल. आपको मोल में कन्वर्ट करना है. ए 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस. 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस है, उसको कन्वर्ट करना है मोल में. सो 32 ग्राम जो होता है ऑक्सीजन गैस उसके अंदर वन मोल होता है. 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, क्योंकि ऑक्सीजन गैस का जो फॉर्मूला है वो होता है O2. सो O2 के लिए हो गया 16 × 2 मीन्स 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस का यहाँ पर वेट हुआ और वो इक्वल होगा 1 मोल के. तो 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस के कितने मोल्स होंगे? आप डिवाइड कर दीजिए 32 से, तो 12/32 आपका आंसर आएगा 0.375 मोल. नेक्स्ट बी 18 ग्राम ऑफ वॉटर. सो 18 ग्राम ऑफ वॉटर मीन्स 20 ग्राम ऑफ वॉटर. फॉर 20 ग्राम ऑफ वॉटर पहले आप वॉटर का क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास, जो कि होता है 18. सो यानी 18 ग्राम वॉटर में एक मोल होगा. 20 ग्राम को आप क्या करेंगे? 20 डिवाइडेड बाय 18, तो आपको जो मोल्स आएंगे वो आएगा 1.11 मोल्स, अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा जब आप कैलकुलेट करेंगे. नेक्स्ट है सी, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल्स 1 मोल. आपको दिया गया है 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो CO2 का आपने निकाला फॉर्मूला, वो आएगा 44. तो 44 ग्राम 1 मोल बनाएगा. देन 22 के लिए आप क्या करेंगे, 22 डिवाइडेड बाय 44. सो आपका आंसर आना चाहिए 0.5 मोल्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मास ऑफ ए 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. मास पूछा गया है आपसे, कितना गिवन है आपको, 0.2 मोल गिवन है ऑक्सीजन एटम का. सो 1 मोल में आपको पता है 16 ग्राम होती है ऑक्सीजन. सो मास ऑफ 0.2 मोल विल बी, मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर मल्टीप्लाई होगा, तो 0.2 इंटू 16 इक्वल्स टू 3.2 ग्राम. नाउ बी, मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना होगा. सो 1 मोल में होता है 18 ग्राम, आपको गिवन है 0.5. सो 0.5 के लिए आप अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा आपका 9 ग्राम. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर S8 प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं S8 में, जो कि 16 ग्राम सॉलिड सल्फर के अंदर है. सो 1 मोल ऑफ सॉलिड सल्फर S8 इक्वल्स टू 8 इंटू 32 मीन्स 256 ग्राम. नाउ 256 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर कंटेन्स 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स. देन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर अवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय 256 इंटू 16 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि 16 का आपको कैलकुलेट करना है 16 ग्राम के लिए. सो आपका आंसर आना चाहिए 3.76 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स. सो आपको पता है कि 1 मोल के अंदर कितना होता है, उसका एटॉमिक मास को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से, 256 आएगा. फिर आपको पता है कि 256 सॉलिड सल्फर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो फिक्स है, क्योंकि 1 मोल के लिए बराबर होना चाहिए 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स. फिर 16 के लिए आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन्स प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड. आपको नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन निकालने हैं, आयन्स निकालने हैं जो कि 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर है. हिंट दिया है आपको, एक हिंट गिवन है, द मास ऑफ एन आयन इज द सेम एज दैट ऑफ एन एटम ऑफ द सेम एलिमेंट. किसी भी आयन का मास उस एटम के मास के बराबर होता है किसी सेम एलिमेंट के अंदर. सो एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का होता है 27 U. नाउ जो भी चीजें आपको गिवन है वो आप पहले राइट डाउन कर लीजिए. लाइक आपको एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम गिवन है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन गिवन है. सो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि 1 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड का वेट कितना होगा, तो वेट के लिए पहले आप कैलकुलेट कर लेंगे मॉलिक्यूलर मास. सो मॉलिक्यूलर मास होगा 2 इंटू 27, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 है, प्लस 3 इंटू 16, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 होता है, तो 102 आएगा, 102. तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो मास होगा वो जाएगा 102 ग्राम. सो 102 ग्राम बराबर हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड. नाउ ये हुआ अवोगैड्रो नंबर के इक्वल. अब आपको निकालना है 0.051 ग्राम के अंदर, तो उसके लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे अवोगैड्रो नंबर को 0.051 मॉलिक्यूल से, अपॉन में रखेंगे आप एटॉमिक मास यानी 102 को. सो आपको जो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे वो मिलेंगे 3.011 इंटू 10 टू द पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ Al2O3. अब आपको क्या निकालने हैं, आयन्स निकालने हैं. तो नंबर ऑफ आयन्स एल्यूमिनियम आयन्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज 2. कितने होंगे? 2, क्योंकि Al2O3 इसी के एटम्स के इक्वल होता है. देयरफॉर द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन्स प्रेजेंट इन 3.011 इंटू 10^20 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड विल बी 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे जो अभी आपको मिला है, जितने मॉलिक्यूल्स आपको अभी मिले हैं. तो आपका आंसर आएगा 6.022 × 10^20. सो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 11. नाउ ऑल द क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड. आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे. थैंक यू.
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद.